अब जब हमारे समझ में नहीं आती तो हम उसका हिंदी का अनुवाद करते हैं, सिर्फ रूपा में लिखा है और अनुवाद की बात हम तात्पर्य पढ़ते हैं। पर जो हम तात्पर्य भी पढ़ते हैं तो कई बार लगता है कि हमारी समझ में नहीं आई भगवान ने क्या कहा। तो मुझे बहुत ही विस्तार से बड़ा ही सरल भाषा में इन ग्रंथों में इसको समझाया कि भगवान वास्तव में कह क्या रहे हैं हमारे लिए। तो ये मेरे हाथ में है, मैं अभी और भी ग्रंथों की रचना चल रही है, ये आप देख रहे हैं 6 ग्रंथ की रचना हो चुकी है, अभी और भी होनी है, लगातार चल रहे हैं इसका कार्य। तो ये आप अपने पास रखिए, जैसे भगवत गीता रखते हैं ऐसे ग्रंथों को रखेंगे तो जब भी आपको कोई कठिनाई होगी सोचने में तो तुरंत इसकी मदद से आप समझ जाए। और प्रभु जी का लेख भी आप पढ़ सकते हैं, हर महीने जो हमारी भगवत दर्शन शक्ति का शक्ति है उसमें इसी इसी भगवान ने कहा, इसलिए ही इसने श्री श्लोक का संक्षिप्त विवरण छपा है। ईश्वर अभी डिटेल में है, विवरण है उसमें संक्षिप्त में छपता है। तो उससे कभी आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से आपको अंदाजा होगा कि कितने विशद रूप से इन्होंने व्याख्या की है भगवान ने मान की। आज वही नाम हमारे भगवान वाला है जो स्वयं हमारे जो बुला रहे हैं। और ये कभी कभी हमें अवसर मिलता है कि रोहिणी वासियों को जब गुरु जी हमारे पास आते हैं आप जो स्वर कर हमारे पास में है तो ये आप जो लेना चाहें ये आप दे सकते हैं। यहाँ पर दोनों गुरु जी हैं उनके पास में है और पीछे रामानंद गुरु जी के पास में मिल जाते हैं, ये आप कह सकते हैं, मेरे को भी कह सकते हैं। तो जो भी अजय गुरु जी हैं ये व्यवस्था करते हैं, आप भी करते हैं बैठे गुरु जी। तो ये बात ही ऐसा है पूरा अभी आप ने तो ले लीजिए आप जिसको जो हालत में आए
ये तो लेके आए पहले से इनके लिए, तो मैंने कहा चलो
ये तो मिलने वाली है
दिखा।
लेकिन ऐसे नहीं है, आप जो लेना चाहेंगे पूछी के लिए व्यवस्था हो जाएगी, आप ले सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ मेरे अपनी तरफ से शुरू कि गुरु जी से आप ऐसे गुरु लीजिए और इनके लिए फिर से सेट करना है। आप गुरु जी का हरि बोल से स्वागत करेंगे और प्रार्थना करेंगे आज में भगवान श्री भगवान ने क्या कहा हमारे लिए वो बताए। हरे कृष्ण
तो 9 बजे समाप्त करना है ना, 9 बजे समाप्त करना है, 8:15 बजे है सामने घड़ी है, 9:15 तक कर सकते हैं, 9:15 तक कर सकते हैं ठीक। कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी जय
जय यशोदनंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदनंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय हो जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा
सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदिष्टिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्यलीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवराम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्र बलदेव की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोले पैर नहीं छूते दूर से प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता है यथारूप अध्याय 4 अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 12 है, तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। आप लोगों के पास पुस्तक नहीं है, लेकिन बिना पुस्तक के भी बोल सकते हैं, मेरे पीछे बोल सकते हैं। भगवान के शब्द बहुत सरल हैं, ठीक है। मेरे पीछे बोलिए। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम्। क्या बात है, लगता है जी कि जितने लोग दिखाई दे रहे हैं इतने लोग हैं नहीं, सुनने में लगता है जैसे बहुत थोड़े लोग हैं। सब लोग बोलिए। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम्। यजन्त इह देवतां। क्षिप्रं हि मानुषे लोके। सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम्। यजन्त इह देवतां। क्षिप्रं हि मानुषे लोके। सिद्धिर्भवति कर्मजा। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। कांक्षन्तः चाहते हुए कर्मणां सकाम कर्मों की सिद्धिम सिद्धि यजन्ति यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं। यह इस भौतिक जगत में देवताः देवतागण क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही मानुषे मानव समाज में लोके इस संसार में सिद्धि सफलता भवती होती है कर्मजा सकाम कर्म से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। आवाज सबको साफ सुनाई दे रही, पीछे इधर इधर पीछे सुनाई दे रही आवाज। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम्। अपने कर्मों की सिद्धि की इच्छा करने वाले यजन्ते हे देवता, इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, यानी कृष्ण की पूजा ना करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। क्षिप्रम हि मानुषे लोके, तो इस मनुष्य जीवन में जल्दी ही सिद्धिर भवति कर्मजा, कर्म से उनको सिद्धि प्राप्त होती है ना। यहाँ पर कर्म का मतलब क्या है, पूजा। जिस देवता की पूजा करते हैं उस देवता से उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, है ना। कौन सी सिद्धि, जो वो चाहते हैं, कर्म की सिद्धि। अब हम सुनेंगे, इसको कम करो ना, इसको और ये डंडे कम करो, नहीं फिर किताब नहीं पढ़ना, किताब ही पढ़ना है ना मुझे, किताब के सामने माइक आ जाएगा ना, इसलिए मैंने सेट किया था ऐसे। अभी ठीक है
जी।
हाँ, तो अब हम सुनेंगे तात्पर्य। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है। सुनिए बड़े ध्यान से, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। एक अज्ञान, समझ लीजिए अच्छी तरह से, इस अज्ञान को दूर करना है, है? और ये जो है बहुत अज्ञान, और इसमें वो अपना बड़ा विद्वत्ता दिखाते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, है ना, अपने को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन अल्पज्ञ हैं। इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परमहा कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं। और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वो नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। इस बात को समझिए, है ना, ये भक्ति वेदांत तात्पर्य है और भगवद गीता का यथारूप ये जो है संस्करण। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरिंचिनुतम, तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग हृत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं, उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं, जल्दी फल मिलता है और जल्दी समाप्त भी हो जाता है ना। और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। ये भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है लोग नहीं जानते हैं। मंत्री पद प्राप्त हो गया है तो सोचते हैं जीवन सफल हो गया, है ना, क्या है, अज्ञान। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थाई निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये किस लिए है? कष्टों के स्थाई निवारण के लिए है। कष्टों का स्थाई निवारण, हमेशा के लिए कष्ट दूर करना है ना। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं, और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं।
ये श्लोक इंगित करता है कि बिरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं, अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य जो दिया है, है ये बहुत आंखें खोलने वाला है ना। लोगों की आंखें बंद हैं और इन बंद आंखों में वे जो है सोचते हैं कि वे देख रहे हैं, है ना। तो बंद आंखों में वो सोचते हैं कि वे सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी आंखें बंद हैं और वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो एक स्वप्न की दुनिया देख रहे हैं। और स्वप्न में जो व्यक्ति देखता है वो वास्तविक नहीं देखता। जैसे घर में आग लगी हो और कोई स्वप्न में देखे कि मैं कितना अच्छा कूलर में बैठा हूँ या मजा ले रहा हूँ, है ना, और घर में आग लगी, है ना। तो इसी प्रकार से लेकिन जो भगवद गीता यथारूप जिसमें प्रभुपाद ने अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य दिए हैं, तो ये जो है आपको जागृत करते हैं, आपको वास्तविकता के धरातल पर लाते हैं। तो इसी श्लोक पर ये श्री भगवान ने कहा जो पुस्तक है, इसमें से कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि सब कुछ सुनाए, क्योंकि काफी विस्तृत व्याख्या है ना। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए इस श्लोक में जो प्रभुपाद की कृपा से मैंने कुछ लिखा है, तो सुनिए बड़े ध्यान से। इस श्लोक में भगवान ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो श्री कृष्ण की शरण ना लेकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। यदि भक्त श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो श्री कृष्ण भी उस भक्त की सेवा के भूखे होते हैं। क्या होते हैं? भूखे। अगर कोई भक्त श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो श्री कृष्ण भी उस भक्त की सेवा के क्या होते हैं? भूखे होते हैं, तथा उस भक्त को अनेक प्रकार से अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। भक्त के जीवन का असली सुख और लाभ यही है कि वो श्री कृष्ण को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करता है, तथा श्री कृष्ण भी अपनी अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा भक्त को सुख प्रदान करते रहते हैं। कृष्ण भी क्या करते हैं? अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा भक्त को सुख प्रदान करते रहते हैं। श्री कृष्ण तथा भक्त के बीच में कोई ऐसे व्यापार का संबंध नहीं होता है। सुनिए ध्यान से, क्या श्री कृष्ण और भक्त के बीच में कोई ऐसे व्यापार का संबंध नहीं होता है कि श्री कृष्ण सोचते हो कि भक्त ने मुझे इतना दिया है तो मैं ऐसे इतना दूंगा, अथवा भक्त ऐसा सोचता हो कि मैंने श्री कृष्ण को इतना दिया है अतः मुझे श्री कृष्ण से इतना प्राप्त होना चाहिए। ये क्या होता है? व्यापार में होता है ना, है ना, लेना देना, भाई हमने आपको इतना दिया इतना आप हमको दीजिए, है ना, ग्राहक और दुकानदार का हिसाब होता है। तो ऐसा हिसाब भक्त का कृष्ण के साथ नहीं होता है, है ना। श्री कृष्ण अपने भक्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या? श्री कृष्ण अपने भक्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे भक्त की कामनाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, क्योंकि कामनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। और भक्ति भी श्री कृष्ण से किसी कामना की पूर्ति नहीं चाहता है। भक्त की कामना तो यही होती है कि वो हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में ही लगा रहे, परंतु ऐसा संबंध किसी भी व्यक्ति का अन्य देवताओं के साथ नहीं हो सकता है। सुन रहे सब लोग? ऐसा संबंध है किसी भक्त का अन्य देवताओं के साथ नहीं हो सकता है। इसी बात को समझाने के लिए भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं कि देवताओं की पूजा केवल लेने और देने की बात पर ही आधारित होती है। समझ रहे हैं? देवताओं की पूजा में क्या होता है? लेना और देना, इतना ही संबंध होता है। हमको आपसे इतना लेना है और आपको हमको आप हमको इतना देंगे, मैं आपको इतना दूंगा, लेना देना होता है। देवताओं के साथ में संबंध ऐसा होता है, है ना। तो सुनिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर भगवान उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने कर्मों की सिद्धि चाहते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने उन लोगों की बात कही थी जो श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, ऐसे लोग अपने समस्त कर्म श्री कृष्ण को ही अर्पित करते हैं, ऐसे लोग श्री कृष्ण से केवल प्रेम ही करते हैं और भविष्य में भी उनसे प्रेम ही करना चाहते हैं। उनकी इच्छा केवल यही रहती है कि उनका श्री कृष्ण से प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहे, इच्छा रहती है। क्या रहती है? अच्छा, कि श्री कृष्ण से प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहे। हाँ? अब भगवान यहां पर कह रहे हैं कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम, अर्थात बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहते हैं, वे किसी ऐसे देवता के साथ संबंध बनाना चाहते हैं जो उनकी सेवा के बदले में उनकी कामना की पूर्ति करे। ये एक प्रकार का नीरस संबंध है। कैसा संबंध है? नीरस मतलब रस नहीं है, शुष्क है, नीरस संबंध है। इस संबंध में सेवा की भावना नहीं है, इसलिए यहां पर भगवान कर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कर्म क्या? कर्मणाम सिद्धिम है, कर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। वे केवल दो बातों पर विचार करते हैं, कर्म और सिद्धि। क्या? कर्मणाम सिद्धिम, हम कर्म करेंगे और हमको सिद्धि मिलना चाहिए, है ना। दो बातों पर विचार करते हैं, कर्म और सिद्धि, है ना। लेकिन जो कृष्ण का भक्त होता है वो केवल सेवा करना चाहता है, सेवा और प्रेम, है ना। तो ये बड़ा अंतर है। कर्म का अर्थ है कि मैं इस देवता की पूजा में इतना कर्म अथवा परिश्रम करूंगा, तथा सिद्धि का अर्थ है कि मुझे इस देवता की पूजा के परिणाम स्वरूप इतना फल प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त मुझे देवता से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे देवता से कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये कर्म करूं और मुझको इतना फल या सिद्धि मिलना चाहिए, है ना, और ना ही उस देवता को मुझसे कुछ लेना देना, ठीक है, ना मुझे देवता से कुछ लेना देना और ना देवता को मुझसे लेना देना। मैं कर्म करूंगा और मुझको ये सिद्धि मिलना चाहिए, है ना। ये जिस प्रकार कोई ग्राहक किसी दुकानदार के पास जाता है तो वो ग्राहक उस दुकानदार से कोई व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए नहीं जाता है। दुकानदार है? कोई व्यक्तिगत संबंध थोड़ी बनाने जाते हैं, है? भाई है? इस चीज का क्या रेट है? है, इस रेट की है, मुझे इतना चाहिए, कितना पैसा हुआ, लो भाई पैसा लो, सामान दो और बस समाप्त। तो देवता का ऐसा संबंध होता है। ग्राहक को दुकानदार के व्यक्तिगत जीवन के सुख दुखों से कोई मतलब नहीं रहता कि भाई आपके परिवार में क्या चल रहा है, कैसा हाल चाल है, वो नहीं पूछता ना दुकानदार से। और ना ही ग्राहक दुकानदार के घर परिवार के संबंध में ही कुछ पूछता है। ग्राहक तो अपने कर्म की सिद्धि के लिए दुकानदार के पास जाता है। क्या? कर्म की सिद्धि के लिए दुकानदार के पास जाता है। ग्राहक का कर्म क्या है? ग्राहक का कर्म है दुकानदार को पैसे देना। और सिद्धि का अर्थ क्या है? दुकानदार से उतने पैसे के बराबर अपने काम की वस्तु लेना। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा करने से पूर्व ही यह निश्चित किया जाता है कि उस देवता की पूजा में मुझे क्या करना पड़ेगा और देवता मुझे क्या देगा, पहले से ही सोचा जाता है। अथवा जिस प्रकार कोई ग्राहक पहले यह सोचता है कि उसे किस वस्तु की आवश्यकता है, फिर वो देखता है उस वस्तु की दुकानदार उस वस्तु की दुकान कौन सी है, हाँ? वो पहले सोचता है कि मुझे क्या चाहिए, फिर सोचता भाई कौन सी दुकान, कौन सी दुकान है। जहां पर उसे वो वस्तु मिल सकती है, फिर वो दुकानदार से पूछता है इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुझे कितना पैसा देना होगा। उसी प्रकार जिन लोगों के अंदर भौतिक कामनाएं हैं, वे सर्वप्रथम ये सोचते हैं मुझे अपनी किस कामना की पूर्ति करनी है, फिर वे ढूंढते हैं कि कौन ऐसा देवता है जो मेरी इस कामना की पूर्ति कर सकता है, फिर वे उन उन नियमों को जानना चाहते हैं जो उस देवता की पूजा के लिए आवश्यक है। तो गीता सातवें अध्याय के 20 से लेकर 23 श्लोक में भगवान कहते हैं भौतिक कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है वे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं। आप समझ रहे अब ये बात जो है कोई बताता नहीं है, गीता के और भी कई विद्वान हैं वो ये बात नहीं बताते हैं, लेकिन ये भगवत गीता यथारूप यहां पर समझिए कि भगवान जो है मतलब एक प्रकार से निंदा कर रहे हैं अन्य देवताओं की शरण लेने की निंदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग शरण लेते हैं भौतिक कामनाओं के लिए, अनित्य है संसार के अनित्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। वे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं तथा उनकी पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे कोई किसी देवता की पूजा की इच्छा करता है तो श्री कृष्ण ही उसकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। इस प्रकार वो उस देवता की आराधना करता है और उस देवता के द्वारा उसे वरदान भी प्राप्त होता है। ऐसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के शरण लेने में और देवताओं की पूजा करने में जमीन आसमान का अंतर है। कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है, है ना? तो इसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं और यह भी बताया गया कि किस देवता की पूजा करने से क्या मिलता है। इसमें काफी लंबी लिस्ट है कि किस देवता की पूजा, शक्ति प्राप्त करने के लिए अग्निदेव की पूजा करना, धन प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की पूजा करना, अन्न आदि भोजन की वस्तुएं पाने के लिए अदिति की पूजा करना, ऐसे बहुत सी इसमें जो है बातें बताई गई हैं। और इसके बाद सुनिए बड़े ध्यान से, श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात निर्गुण हैं, अर्थात वे भौतिक प्रकृति से अत्यंत परे हैं। अतः जो व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन करता है वह भी उन्हीं की तरह भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाल लिखते हैं श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति से परे अपने दिव्य पद पर स्थित हैं तो फिर उनकी पूजा से भौतिक ऐश्वर्य का फल किस प्रकार मिल सकता है? भौतिक चीजें, श्री कृष्ण की पूजा करने का असली फल दिव्य ज्ञान है। क्या? श्री कृष्ण की पूजा करने का असली फल क्या है? दिव्य ज्ञान। इस प्रकार श्री कृष्ण का पूजक भौतिक संपत्ति से अंधा होने के बजाय दिव्य ज्ञान के नेत्र प्राप्त करता है। भौतिक संपत्ति से अंधा होने के बजाय कृष्ण का भक्त क्या प्राप्त करता है? दिव्य ज्ञान के नेत्र प्राप्त करता है। भगवान भौतिक सृष्टि के विरक्त साक्षी हैं, इसलिए उनका भक्ति भी भौतिक प्रकृति के गुणों से पृथक रहता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसका धन का अपहरण कर लेता हूं। क्या करता हूं? देने के बजाय क्या करता हूं? मैं अपहरण कर लेता हूं। अगर मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसके धन का अपहरण कर लेता हूं, तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के सुजन और मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वो कष्ट पर कष्ट सहता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है ये सच है कि जो लोग श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वे कुछ काल तक इस भौतिक शरीर में और भौतिक स्थितियों में रहते हैं किंतु भगवान की अचिंत दया है और उन्हें केवल शुद्ध होने पर भक्ति का फल मिलता है। किंतु यदि भगवान अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं तो वे उन्हें विशेष कष्ट क्यों देते हैं? अब प्रश्न उठता है कि भगवान अगर भक्त पर दयालु हैं तो विशेष कष्ट क्यों देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर एक दृष्टांत द्वारा दिया जा रहा है। एक अत्यंत स्नेही पिता अपने बच्चों को खेलने से रोककर उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजने का उत्तरदायित्व लेता है। क्या समझे? बच्चा तो सोचता है कि पिताजी मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं, मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हैं, स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं, पिताजी अच्छे नहीं हैं, बहुत कठोर स्वभाव है पिताजी का, बच्चा सोचता है ना। ऐसे कभी कृष्ण का लगता है कि भाई व्यवहार तो कृष्ण का बड़ा कठोर है। एक अत्यंत स्नेही पिता अपने बच्चों को खेलने से रोककर उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजने का उत्तरदायित्व तो लेता है। वो जानता है कि बच्चों के प्रति यही सही प्रेम है, भले बच्चे इसे ना समझ पाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण अपने सभी भक्तों पर दयापूर्ण होते हुए भी कठोर हैं। कृष्ण भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, चूंकि मेरी पूजा कठिन है, मेरी पूजा क्या है, कठिन है, इसे सामान्यतया लोग मुझसे कतराते हैं और बदले में उन अन्य देवों की पूजा करते हैं जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं। जब ऐसे लोग इन देवताओं से ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं तो वे घमंडी तथा अधर्मी बन जाते हैं। क्या समझे, देवताओं से उनको भौतिक ऐश्वर्य मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, वे घमंडी और अधर्मी, घमंडी और अधर्मी बन जाते हैं। फिर भी उन देवताओं को भी अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं जिन्होंने उन्हें बर दिए, उन देवताओं का। अब देखिए एक बड़ी सुंदर कथा है, बड़े ध्यान से सुनिए, हालांकि हो सकता है कई बार सुनी हो, तो जितने बार सुने उतना ही रस है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के इसी 88वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव और अन्य देवता किसी को साप या वर देने में समर्थ हैं। कौन, ब्रह्मा विष्णु और शिव तथा अन्य देवता किसी को साप या वर देने में समर्थ हैं। शिव तथा ब्रह्मा साप देने या वर देने में बहुत शीघ्रता करते हैं। क्या समझे, शिव और ब्रह्मा जी सांप देने में और वर देने में बहुत शीघ्रता करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। इस संबंध में एक प्राचीन घटना है जिसमें ब्रकासुर को वर देने पर शिवजी संकट में पड़ गए। एक बार मार्ग में ब्रकासुर नारद जी से मिला। कौन मिला नारद जी से, ब्रकासुर नारद जी से मिला। इस दुष्ट ने उनसे पूछा कि तीन प्रमुख देवों में कौन सबसे जल्दी प्रसन्न होकर वर देने वाला है। दुष्ट इसलिए पूछता है कि तीन देवों में कौन जल्दी प्रसन्न होकर के वर देने वाला है। तीन देव कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। नारद जी ने कहा कि यदि तुम शिवजी की पूजा करोगे तो तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। शिव जी अपनी पूजा करने वाले के थोड़े से गुण को देखकर शीघ्र प्रसन्न होकर वर दे देते हैं और उसके थोड़े से दोष को देखकर शीघ्र रुष्ट होकर शाप दे देते हैं। ऐसी बात सुनकर वह असुर केदार क्षेत्र में जाकर अग्नि को शिव जी का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्नि में आहुतियां देने लगा। क्या करने लगा, अपने शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में आहुतियां देने लगा। क्यों, जल्दी प्रसन्न करना है शिव जी को। सात दिन तक वो ऐसा करता रहा। कितने दिन तक, सात दिन तक क्या करता रहा, शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में डालता रहा। परंतु जब शिव जी वर देने के लिए प्रकट ना हुए तो अपना सिर काटने के लिए तैयार हो गया। कैसे सिर काटने के लिए तैयार हो गया, एक बाएं हाथ से उसने अपने सिर को पकड़ा, बालों को पकड़ा, दाएं हाथ से अग्नि में डाल देगा, ये दाएं हाथ से काट करके सिर को अग्नि में डालने के लिए तैयार हो गया। उसी क्षण परम दयालु शिवजी अग्नि से प्रकट हुए। उस असुर को आत्महत्या करने से रोकने के लिए उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अरे अरे क्या कर रहे हो शिवजी, शिवजी के स्पर्श से उसका शरीर स्वस्थ हो गया। शिवजी ने उससे कहा, हे प्रिय ब्रकासुर, अब बस करो, तुम जो कुछ चाहते हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वो वर दूंगा। हाय, तुमने अपने शरीर को बहुत कष्ट पहुंचाया, मैं तो केवल जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाता हूं। उस पापी ने अत्यंत भयंकर वर मांगा। देखो, प्रार्थना स्तुति नमस्कार कुछ नहीं, मुझे वर चाहिए। सीधा है ना, कोई प्रेम नहीं, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं है, उन्हें तो मैं क्या करूंगा, सिर काट दूंगा अपना, मुझे वरदान दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, अपना सिर काट दूंगा है ना, मैं जिसके भी सिर में हाथ रखूं उसकी मृत्यु हो जाए, ये वरदान। ये सुनकर शिव जी बहुत चिंतित हो गए, परंतु विवश थे। अब उन्होंने कष्टपूर्ण हंसी के साथ उसे वर दे दिया, बहुत कष्ट हुआ। और वर दे दिया, मानो उन्होंने विषैले सर्प को दूध पिला दिया। विषैले सर्प को क्या पिला दिया? दूध पिला दिया। शिव जी की वर की परीक्षा के लिए वो शिव जी के ही सिर पर हाथ रखने का प्रयास करने लगा। अब देखिए कितनी कठिन स्थिति है। अब शिव जी अगर चाहें तो उसको मार सकते हैं, क्यों? वो शिव जी के सिर में हाथ रखने रखेगा, उसके पहले शिव जी उसको मार सकते हैं, लेकिन नहीं मार सकते। क्यों? तो उन्होंने वरदान दिया है, तो वरदान का प्रयोग करने का अधिकार, उसको अधिकार है। आप सुन रहे, अगर मान लो उसको मार दें हैं, तो फिर वरदान नहीं देने का फिर फायदा क्या हुआ, है कि नहीं? वो अपने वरदान का प्रयोग करना चाहता है ना, तो फिर वो एक अन्याय हो जाएगा। अब शिव जी अपने उस गुण से बन गए, है ना, वो दुष्ट जो है शिव जी के इस गुण का गलत फायदा उठा रहा है ना। तो अब जो है ये कितनी कठिन स्थिति है, ये सोचिए, जबकि शिव जी के पास तो कितनी शक्ति है मारने की, तो कितनी बड़ी शक्ति है शिव जी की भी, लेकिन अभी कितनी कठिन स्थिति में पड़ गए, इसको मार नहीं सकते हैं, और शिव जी के सिर में हाथ रखे वो है, कितनी कठिन स्थिति है सोचिए। ये देखकर शिव जी अत्यंत भयभीत हो गए, और शिव जी भागकर क्षीर सागर में स्थित श्री कृष्ण के निकट पहुंचे और उनकी शरण ली। देखो शिव जी को भी शरण लेनी पड़ी, कितनी शक्ति है शिव जी में, प्रलय करते हैं, पूरी सृष्टि की प्रलय करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति अब सोचो तो मतलब आ गई उनके सामने। क्या करना पड़ा उनको, क्या करना पड़ा? कृष्ण की शरण लेनी पड़ी, शरण लेनी पड़ी। ये जो है मतलब बड़ी गहरी बात है, समझना पड़ेगा। ये ऐसी बात नहीं कि भाई ऐसे कह दिया, बहुत गहरी बात है। शिव जी को कृष्ण की शरण लेनी पड़ी। उस समय श्री कृष्ण एक ब्रह्मचारी के रूप में वो ससुर के सामने आए और बोले, हे मित्र, शंकर जी का वरदान सत्य नहीं है। कृष्ण क्या बोले, और कृष्ण भी चाहे तो उसको मार सकते हैं, कृष्ण भी चाहे तो उसको मार सकते हैं, लेकिन नहीं। कृष्ण जी क्या चाहते हैं, जैसे इसने शिव जी को धोखा दिया और वरदान लेकर के उनको मारना चाहता है, तो कृष्ण क्या चाहते हैं कि इसको धोखा दे करके ये खुद ही अपने को मारे। तो भगवान जो है ये जानते हैं तरीका विधि, कैसा व्यवहार करना चाहिए किस व्यक्ति के साथ में। तो भगवान ने क्या कहा, जैसे उसने शिव जी के साथ में छल कपट किया, वरदान लेकर के ऐसा कर रहा है, तो भगवान क्या कहते हैं कि शिव जी का वरदान सत्य नहीं है। इस वरदान की परीक्षा तुम अपने ही सिर में हाथ रख करके करो। क्या करो, वरदान की परीक्षा करना है? अरे तो इतना लंबा चक्कर क्यों कर रहे हो कि शिव जी के पीछे भाग रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो? परीक्षा करने का बहुत सरल तरीका है क्या? तो परीक्षा के लिए इतना लंबा चक्कर क्यों कर रहे हो, परीक्षा ही करना है, है तो अपने सिर में हाथ रखे कर लो, है ना। और शिव जी क्यों भाग रहे हैं, कि वरदान झूठा है ना उनका? भगवान ने ऐसी बातें बनाई कि शिव जी क्यों भाग रहे हैं, कि झूठा निकलेगा वरदान, तो इसलिए भाग रहे हैं। तो भगवान ने इस तरह से उसको फंसाया जाल में कि शिव जी इसलिए भाग रहे हैं, उनका वरदान सच्चा नहीं है इसलिए भाग रहे हैं, है? और तुम जो है इतनी मूर्ख, तुम इतने मूर्ख हो कि तुम परीक्षा लेने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हो, हैं? अरे परीक्षा करने के लिए अपने सिर में हाथ रख के देख लो। तो भगवान ने ऐसा कहा, और शंकर का वरदान मिथ्या हो तो फिर शंकर का अवश्य वध कर देना, तब तुम वध करो। अगर शंकर जी का वरदान झूठा निकला तो शंकर जी का वध करना तुम, है ना। अब शंकर जी के वध करने की शक्ति तो उसके अंदर नहीं है ना, लेकिन अगर झूठा है वरदान तो फिर तो शंकर जी को मार ही नहीं सकता, फिर कैसे मार सकते। लेकिन असुर है ना, असुर को जो है लगता है कि प्रशंसा है मेरी, तो उसको सच मान लेता है वो, है ना। तो क्या किया, श्री कृष्ण की बात का विश्वास कर उस दुष्ट ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और मर गया। इस प्रकार शिव जी शंकर से मुक्त हुए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इस मनुष्य जीवन में देवताओं की पूजा करके लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। क्या क्या देवताओं की पूजा करके लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उस सिद्धि का परिणाम क्या होता है, उस सिद्धि को प्राप्त करके वे अन्य जीवों के प्रति, साधुओं और देवताओं के प्रति अपराध करने लगते हैं और शीघ्र उनका विनाश हो जाता है, उसका दुरुपयोग करते हैं, सिद्धि का दुरुपयोग करते हैं और विनाश हो जाता है। अब उनकी मृत्यु के बाद क्या वो सिद्धि उनके पास रहती है, नहीं, मृत्यु के बाद वो सिद्धि उनके साथ नहीं रहती। ब्रह्मास्त्र ने 7 दिनों तक अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्नि में आहुति दी, कितना 7 दिन तक क्या करता रहा, मांस काट काट करके अग्नि में जलाया है? इतने कष्ट के बाद उसे कुछ वरदान प्राप्त हुआ, उस वरदान के कारण उसकी ही मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उसका वरदान भी समाप्त हो गया, खत्म। क्या समझे, वरदान भी खत्म। इस प्रकार यहां पर भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मेरे प्रेम संबंध को ठुकराकर अन्य देवताओं के शरण लेते हैं अथवा पूजा करते हैं उन्हें कोई स्थायी लाभ नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ हमने चर्चा की आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, है ना। तो ये विषय बहुत रोचक है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हैंड माइक नहीं, अच्छा तो जोर से बोलो जोर।
तांडव नृत्य भी किया तो कुछ ऐसा भी आती है चर्चा कि तांडव नृत्य करवाया उससे?
इनका कहना है कि तांडव नृत्य किया था। हाँ, ऐसा है कि ये प्रकाशुर शकुनी का पुत्र था जिसने शिव जी से ये वरदान मांगा था। और एक दूसरे भी असुर की कथा आती है दूसरे शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में तो यही कथा आती है ब्रह्मासुर की, जिसने शिव जी से ये वरदान मांगा था और शिव जी शंकर में पड़ गए थे। लेकिन दूसरे शास्त्रों में एक भस्मासुर की कथा आती है, है ना। तो वो मुझे पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन कहीं पर तो होगा। वो भस्मासुर जो है उसने भी ये वरद मांगा था कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, इसने तो कहा था मर जाए, वो भस्म हो जाए, भस्म का मतलब राख बन जाए, है ना। तो भस्मासुर उसका नाम है ना। तो उस लीला में हमने सुना है, है ना, कि जब शिव जी ने शरण ली थी भगवान की तो भगवान स्त्री की वेश में आए थे, स्त्री की वेश में आए थे, और स्त्री की वेश में आए तो फिर वो शिव जी को भूल गया कि अब शिव जी को मारने से क्या करना है, ये तो जो है कितनी बढ़िया स्त्री मुझे मिल गई है, है ना। तो स्त्री से जो है वो याचना करने लगा। तो भगवान बोले कि देखो, मैं तो तब प्रसन्न होऊंगी जब तुम मेरे साथ नृत्य करो और जैसे मैं करूं वैसे तुम करो। तब तो बहुत अच्छा, उसने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है। और भगवान नृत्य करते करते जब ऐसे किया उन्होंने तो उसने भी ऐसे किया। इस तरह से मर गया वो। तो भगवान की जो है, भगवान में और देवताओं में अंतर है, यहाँ पर जो है अंतर समझाया गया है। तो इसको जो है आजकल बताया नहीं जाता, अज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए ये बताया जाता है कि भाई सब देवता, किसी भी देवता की पूजा करो एक ही फल मिलेगा, सब देवता परमेश्वर के रूप हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान यहाँ दूर किया है, प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में दूर किया। और भगवान जो बता रहे हैं, भगवान ने भी जो है मतलब जो भगवान के कहने का असली जो तात्पर्य है कि यजंत ए देवता, देवता है ना, तो भगवान भी जो है ये बता रहे हैं क्षिप्रम ही मानव से लोके सिद्धिर भवति कर्म जाए, जल्दी मनुष्य लोक में उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है इसी मनुष्य जीवन में। और मनुष्य जीवन में जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है जल्दी, तो जल्दी मनुष्य जीवन में ही समाप्त भी हो जाती है। हैं, मान लीजिए कि वो ब्रकासुर कहे कि भाई शिव जी ने मुझे वरदान दिया था तो मुझे अगले जन्म में भी मिलना चाहिए, तो इसका क्या उत्तर है? अगर मान लीजिए वो कहे कि नहीं ये शिव जी का जो वरदान है वो अगले जन्म में मुझे क्यों नहीं मिला, शरीर तो नहीं रहेगा लेकिन जो वरदान मिला वो तो रहना चाहिए ना उसके साथ, शरीर शरीर तो बदल गया लेकिन उसने जो वरदान मांगा तो वरदान तो रहना चाहिए ना, साथ में कोई चीज जाती नहीं। लेकिन अगर वो कहे, अगर वो कहे तो फिर उसका फिर क्या जवाब है? अगर वो कहे कि शिव जी मैंने आपसे वरदान मांगा था तो मेरा शरीर बदल गया है तो मुझे वरदान तो मुझे मिलना चाहिए,
तो शरीर के साथ संबंधित था, शरीर के साथ समाप्त हो गए,
देवता का वरदान था तो देवता का वरदान तो यही समाप्त शरीर के साथ
नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि शरीर जब बदल जाता है तो वो फिर उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो पिछले शरीर में क्या था, आप समझ रहे हैं? कृष्ण के जो भक्त हैं, कृष्ण के भक्त अगर उनका शरीर बदलता भी है इस भौतिक संसार में भी, अगर शरीर बदलता भी है तो भी वो कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, आप समझे ना। ये भक्ति जो है ऐसी है जो तो शरीर बदलने के बाद भी बनी रहती है, और वो मांगते भी ऐसे हैं, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्ति रहे तो गीत ही, जन्म जन्म आपकी भक्ति रहे, वो मांगते हैं। वृकासुर तो उसने ये नहीं मांगा था कि जन्म जन्म के लिए मुझे ये वरदान चाहिए, क्या मांगा था, क्या मांगा था? जिस किसने क्यों, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता है, आप सुन रहे, ब्रकासुर ने जो है ये सोच करके कि ये वरदान मैं अगर प्राप्त कर लूंगा तो मैं सबको मार सकता हूं, किसी को भी मार सकता हूं लेकिन मैं नहीं मरूंगा, इसलिए अगले जन्म की बात ही नहीं सोचते वो, असल में अगले जन्म की बात ही नहीं सोचते हैं। और अगले जन्म जब मिल जाता है उनको तो उनकी पहचान समाप्त हो जाती है, वो नहीं कह सकते कि पिछले जन्म मैंने तपस्या की थी और मुझे वरदान मिला था, अब मुझे अब वो वरदान वो मेरा क्यों नहीं है, वो नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, स्मृति खत्म हो गई उनकी, स्मृति खत्म हो गई। लेकिन केवल भक्त हैं जो चतुर होते हैं, और वो क्या मांगते हैं, वो चाहते हैं अविस्मृति चरणारविंदे भवे भवे में स्तु भवत प्रसादात, कि तुम्हारे चरण कमलों की स्मृति ना जाए, भवे भवे जन्म जन्म, शरीर छोटे कोई भी जन्म मिले आपके चरणों की स्मृति नहीं जाना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतां भक्ति रहे तो गीत वही, जन्म जन्म आपके हेतु की भक्ति रहे, तो वो मांगते हैं। असुर लोग नहीं मांगते जन्म जन्म हमको ये वरदान चाहिए, आप समझ रहे हैं? हिरण्यकशिपु ने जब वरदान मांगा था तो क्या मांगा था, जन्म जन्म के लिए मांगा था वरदान, नहीं मैं ना मरूं, पानी में ना मरूं, जमीन में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, है ना। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं तुम अमर नहीं हो सकते, तो उसने मरने की जो है सब प्रकार की स्थितियों में उसने मांग लिया कि मैं ना मरूं, इस तरह से ना मरूं मैं, है ना। लेकिन जब मर गया तो वो नहीं कह सकता था कि ब्रह्मा जी आपने मुझे वरदान दिया था, अब मुझे वो वरदान मुझे फिर होना चाहिए, वही वरदान मुझे होना चाहिए, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं कि मैं मर सकता हूँ।
ऐसे जो गज था वो भगवान का भक्त था।
कौन?
जो गजेंद्र हाथी था,
गजेंद्र
वो भगवान का भक्त था।
हाँ,
तो उसने देवताओं की अवहेलना करके नारायण को पुकारा सी।
हाँ, गजेंद्र, गजेंद्र कष्ट में था, है ना, तो उसने जो है देवताओं को याद ना करके सीधे नारायण को पुकारा। उसके पास ज्ञान था, उसे ज्ञान था, इसने केवल इस संकट से ही नहीं छूटा है। उसने जब प्रार्थना की थी तो केवल इस संकट से छूटने के लिए प्रार्थना नहीं की थी, इस संकट से तो छुड़ाइए मुझे, लेकिन साथ हमेशा के लिए जन्म मरण के संकट से भी छुड़ाइए मुझे। तो वो भक्ति में ये हमारे पास जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है भक्ति में, कि भौतिक संसार के जो है इस बंधन से ही छूटे, कर्म बंधन से ही छूटे। इस भौतिक संसार में जब तक रहेंगे ये कष्टों का है, यहां पर कोई भी देवता से कोई भी वरदान प्राप्त कर लें, लेकिन आप कष्टों से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, जो भौतिक संसार है ये क्या है, दुखों का स्थान है, क्योंकि दुख भोगने के ही लिए बनाया गया है, है? तो यहां पर आप सुखी नहीं हो सकते। इसलिए जो भक्त हैं वो केवल सेवा का वरदान मांगते हैं, सेवा भक्ति, कि संसार में भी वो अगर वो रहते हैं और जन्म भी लेते हैं और बार बार जन्म लेते हैं तो भी वो भक्ति है के द्वारा वे कष्टों से सुरक्षित हैं, ठीक है ना। तो आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि जो पाना चाहते हैं तो वो देवताओं की पूजा करते हैं और जल्दी ही उनको मनुष्य के जीवन में कर्मों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना। तो इस विषय में हमने जो चर्चा की है, हैं? उसमें आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? अच्छा, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो देवताओं के साथ ऐसे जो भक्त होते हैं उनका क्या संबंध होता है, क्या कुछ सेवा का संबंध होता है, प्रेम का संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, कौन बताएगा? लेन देन का, जैसे उदाहरण
दुकानदार
है, भाई आपको क्या चाहिए, हाँ आपको कपड़ा चाहिए, है ना, तब ढूंढेंगे भी कौन सी दुकान है जहाँ कपड़ा मिलता है, कपड़ा भी विशेष कपड़ा चाहिए, सिल्क का कपड़ा चाहिए, तो कोई उस कपड़ों की बहुत सी दुकान भी सिल्क की जो दुकान है उसमें जाएंगे, है ना, फिर वो पूछेंगे भाई हाँ ये क्या भाव है सिल्क, हैं वो बताता है ये भाव है, हमको इतने मीटर कपड़ा चाहिए, कितना पैसा हुआ, इतना पैसा हुआ दो और मुझे कपड़ा दो, लो पैसा लो कपड़ा दो, कोई अपना और कोई संबंध नहीं होता है। तो ये जो है देवताओं के साथ में केवल ये संबंध होता है, है ना। लेकिन कृष्ण के साथ क्या कृष्ण ऐसा सोचते हैं कि भक्त ने मेरे लिए इतना किया तो मुझे उसको इतना देना है, कैसा लेन देन सोचते हैं कृष्ण? कृष्ण ऐसा नहीं सोचते हैं। या भक्त सोचता है कि कृष्ण के लिए मैंने इतना किया तो कृष्ण मुझे इतना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचता कृष्ण। भक्त जो है क्या चाहता है कृष्ण से, क्या पाना चाहता है? सेवा पाना चाहता है और प्रेम करना चाहता है, उसकी चाहती है और प्रेम बढ़े मेरा, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तार कहीं से निकल गया है, हरि बोल। हाँ, तो जो भक्त है वो कृष्ण से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है हो गया। ग्रंथराज श्रीमद भगवत गीता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय।
तो सभी जोरदार करतूत ध्वनि से इस प्रिय चीता विद प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। और प्रभु जी ने जो बताया उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जो प्रभु जी ने जो बुक्स लिखी हुई हैं, श्री भगवान ने कहा तो कोई भी भक्त को अगर बुक्स चाहिए तो हमें बता सकते हैं, उनके लिए मंगा करके फिर हम उनको दे देंगे। हरे कृष्णा।